नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजनिवास का नाम परिवर्तित कर लोक निवास रखा गया। सरकारी कार्यों के लिए लोक निवास नाम का उपयोग किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025 पारित हुआ। स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है उत्पाद शुल्क। श्री विजयपुरम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण पर बैठक आयोजित की गई। 5 दिसंबर तक 100% प्रपत्र एकत्र करने के लिए निर्देश। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दुकानें एवं प्रतिष्ठान संशोधन विनियम 2025 लागू। पंजीकरण सरल होने के साथ साथ महिला सहभागिता पर जोर। सुबह के समाचारों के साथ मैं जीनत बीबी। द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल डी के जोशी ने राजनिवास का नाम बदलकर लोक निवास करने की स्वीकृति प्रदान की है। यह नाम परिवर्तन सभी अधिकारी प्रयोजनों के लिए प्रभावी रहेगा। अब उपराज्यपाल सचिवालय के सभी अधिकारी पत्राचार में राजनिवास के स्थान पर लोक निवास लिखा जाएगा। यह परिवर्तन आधिकारिक वेब पोर्टल, स्टेशनरी, मुहूर्त तथा अन्य विविध सामग्रियों, संकेत पट्टिकाओं आदि में भी लागू किया जाएगा। लोकसभा ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया है। प्रस्तावित कानून का उद्देश्य सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944 में संशोधन करना है। विशेष रूप से तंबाकू उत्पाद जैसे सिगरेट, सिगार, हुक्का तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, जर्दा और सुगंधित तंबाकू पर उत्पाद शुल्क और सेस बढ़ाना है। यह संशोधन सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क दर बढ़ाने की वित्तीय क्षमता प्रदान करने के लिए आवश्यक है, ताकि सेस समाप्त होने के बाद कर भार सुरक्षित रहे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने विधेयक पर चर्चा का उत्तर देते हुए कहा कि यह कोई नया कानून नहीं है और न ही कोई अतिरिक्त कर है। उन्होंने कहा कि यह सेस नहीं है, बल्कि यह वह उत्पाद शुल्क है जो जीएसटी से पहले लागू था। जीएसटी लागू होने के बाद भी जुलाई 2017 से 2024 तक मुआवजा सेस की दर अपरिवर्तित रही। जीएसटी लागू होने से पहले तंबाकू दरों को वार्षिक रूप से बढ़ाया जाता था, जिसका मुख्य कारण स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं थी। उच्च कीमतें और कर तंबाकू के सेवन की आदत से रोकथाम के लिए थी। वित्त मंत्री ने कहा कि देश में सिगरेट पर कुल कर भार खुदरा मूल्य का 53% है। मुआवजा सेस अब केंद्र में लौट रहा है और इसे उत्पाद शुल्क के रूप में वसूला जाएगा, जिसे राज्यों को 41% कर वितरण के रूप में पुनर्वितरित किया जाएगा। संचार साथी ऐप की लगातार बढ़ती स्वीकार्यता को देखते हुए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मोबाइल निर्माताओं के लिए इस ऐप का पूर्व स्थापन अनिवार्य नहीं रहेगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि नागरिक इस ऐप को अपनी इच्छा से कभी भी हटाने के लिए स्वतंत्र है तथा ऐप में उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के अतिरिक्त कोई अन्य कार्य नहीं है। संचार मंत्रालय द्वारा जारी वक्तव्य में बताया गया कि अब तक 1.4 करोड़ उपयोगकर्ता इस ऐप को डाउनलोड कर चुके हैं और प्रतिदिन लगभग 2000 ठगी की घटनाओं की रिपोर्ट इस मंच के माध्यम से प्राप्त हो रही है। मंत्रालय ने आगे जानकारी दी कि केवल पिछले एक दिन में ही 6 लाख नागरिकों ने ऐप डाउनलोड करने के लिए पंजीकरण किया है, जो इसके उपयोग में 10 गुना वृद्धि को दर्शाता है। मंत्रालय ने यह भी कहा कि यह ऐप पूर्णतः सुरक्षित है और साइबर जगत में सक्रिय दुष्ट तत्वों से नागरिकों को बचाने के लिए ही बनाया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त पवन कुमार शर्मा ने कल सचिवालय में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारियों, ईआरओ, एईआरओ तथा अन्य चुनाव अधिकारियों के साथ विशेष गहन पुनरीक्षण के संदर्भ में बैठक की। मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने प्रस्तुति के माध्यम से एसआईआर की प्रगति के बारे में जानकारी देते हुए यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य पर बल दिया कि कोई पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति सूची में शामिल न हो। 97.60% गणना प्रपत्र डिजिटाइज किए जा चुके हैं। लगभग 800 बूथ स्तरीय अधिकारियों की नियुक्ति के साथ राजनीतिक दल भी सहयोग दे रहे हैं। वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त ने कल तक 100% प्रपत्र एकत्र करने तथा 16 दिसंबर को प्रकाशित होने वाली प्रारूप मतदाता सूची के लिए प्रक्रिया पूर्ण करने पर जोर दिया। उन्होंने 2002 की मतदाता सूची से वर्तमान मतदाताओं के मानचित्रण प्रतिशत को बेहतर करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। बैठक के बाद उन्होंने कुछ मतदान केंद्रों का अवलोकन किया तथा वहां उपस्थित बीएलओ तथा मतदाताओं से बातचीत की। श्री विजयपुरम नगरपालिका परिषद 6 और 7 दिसंबर को शाम 3 बजे से रात्रि 10 बजे तक मरीना पार्क के समीप स्ट्रीट फूड महोत्सव का आयोजन करेगी। इस महोत्सव का उद्देश्य द्वीप समूह की पाक कला परंपरा तथा विविध स्वादों को प्रदर्शित करना है। महोत्सव का लक्ष्य सुरक्षित एवं स्वच्छ भोजन संस्कृति को बढ़ावा देना, स्थानीय उद्यमिता को सशक्त करना तथा समुदाय आधारित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना है। भारत सरकार ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह दुकानें एवं प्रतिष्ठान संशोधन विनियम 2025 की सूचना जारी कर दी है। ये संशोधन 21 नवंबर से प्रभावी हो गया है और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के अनुरूप सरल अनुपालन, पारदर्शिता तथा श्रमिक हित सुनिश्चित करते हैं। संशोधन के अनुसार अब जिन दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, उनके लिए पंजीकरण अनिवार्य है। एक बार पंजीकरण प्रमाण पत्र जारी होने पर वह मान्य रहेगा। रात के समय महिला कर्मचारी अब शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे तक कार्य कर सकती है। ये संशोधन सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों, सेवा प्रदाताओं तथा अन्य प्रतिष्ठानों पर प्रशासनिक बोझ कम करेंगे। विस्तृत अधिसूचना श्रम विभाग के अधिकारी वेब पोर्टल पर उपलब्ध है। एमवी स्वराज द्वीप कल सुबह 10 बजे श्री विजयपुरम से विशाखापत्तनम के लिए रवाना होगा। अतिरिक्त सामान को चढ़ाने का कार्य आज दोपहर 2 बजे से शाम 4 बजे तक किया जाएगा। यात्रियों को जहाज पर चढ़ाने का कार्य कल सुबह 8 बजे से 9 बजे तक चलेगा। जहाज हेडो जेटी से छूटेगा। आयरलैंड महिला भारोत्तोलकों ने कल त्रिशूर में आयोजित अस्मिता खेलो इंडिया भारोत्तोलन प्रतियोगिता में 2 और पदक जीतकर द्वीपों का नाम रोशन किया। एमटीआर पृथिका ने 53 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता, जबकि तानियाशा ने 63 किलोग्राम जूनियर वर्ग में स्वर्ण पदक अपने नाम किया। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा समाचार हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियां। लोकसभा में तंबाकू उत्पादों पर सेंट्रल एक्साइज संशोधन विधेयक 2025 पारित करने के समाचार को द डेली टेलीग्राम्स ने अपनी बड़ी खबर बनाते हुए सचित्र प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबार ने अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस के अवसर पर समाज कल्याण निदेशालय के अभ्युदय परिसर में कार्यक्रम आयोजित करने और शिक्षा विभाग की ओर से बच्चों के लिए खेलकूद और अध्ययन दौरे आयोजित करने के समाचार को भी प्रमुखता दी है। इन्फो इंडिया ने सांसद के द्वीप समूह में आईटी निदेशालय स्थापित करने की दिशा में प्रशासन द्वारा उठाए गए कदम का स्वागत करने के समाचार को, जबकि इकोफ इंडिया ने सांसद द्वारा सरकारी नौकरियों में आयु सीमा 40 वर्ष निर्धारित करने के अनुरोध के समाचार को प्रमुखता से छापा है। जंगलीघाट क्षेत्र में भारी भीड़ को देखते हुए राज्य परिवहन विभाग द्वारा एटीआर एक्सप्रेस सेवाओं को वीआईपी रोड से संचालित करने के समाचार को द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी में जगह मिली है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राजनिवास का नाम परिवर्तित कर लोक निवास रखा गया। सरकारी कार्यों के लिए लोक निवास नाम का उपयोग किया जाएगा। लोकसभा में केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन अधिनियम 2025 पारित हुआ। स्वास्थ्य संरक्षण के उद्देश्य से बढ़ाया जा रहा है उत्पाद शुल्क। श्री विजयपुरम में वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त की अध्यक्षता में विशेष गहन पुनरीक्षण पर बैठक आयोजित की गई। 5 दिसंबर तक 100% प्रपत्र एकत्र करने के दिए निर्देश। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में दुकानें एवं प्रतिष्ठान संशोधन विनियम 2025 लागू। पंजीकरण सरल होने के साथ साथ महिला सहभागिता पर जोर। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।